नमस्ते, मैं आ रहा हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एन कैथरीन हिल्स की हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन, वर्चुअल बॉडीज इन साइबरनेटिक्स लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेटिक्स, 1999 में प्रकाशित एक प्रभावशाली अकादमिक अध्ययन है। यह पुस्तक तकनीक के कारण मनुष्य के समाप्त हो जाने की भविष्यवाणी नहीं करती, बल्कि उस पुराने विचार की आलोचना करती है जिसमें मनुष्य को शरीर से अलग पूर्णतः स्वायत्त, तर्कशील और नियंत्रक व्यक्ति माना जाता है। हेल्थ साइबरनेटिक्स के इतिहास, सूचना सिद्धांत, कृत्रिम जीवन और साहित्यिक कृतियों को साथ रखकर पूछती हैं कि सूचना को शरीर से स्वतंत्र मानने का विचार कैसे बना। उनका मुख्य आग्रह है कि सूचना हमेशा किसी भौतिक माध्यम, ऊर्जा, उपकरण, देह और सामाजिक व्यवस्था में घटित होती है। इसलिए डिजिटल युग में शरीर को गॉड समझना एक तकनीकी तथ्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक चुनाव है। पुस्तक का उद्देश्य मानव और मशीन के बदलते संबंधों को ऐतिहासिक गंभीरता के साथ समझना है। यह आलोचनात्मक सिद्धांत साहित्य अध्ययन, मीडिया अध्ययन और विज्ञान प्रौद्योगिकी अध्ययन के बीच सेतु बनाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पोस्ट ह्यूमन का अर्थ मानवता का अंत नहीं, उदार मानवतावादी व्यक्ति की सीमा है। हिल्स के लिए पोस्ट ह्यूमन किसी रोबोटिक प्राणी, कंप्यूटर में अपलोड हुई चेतना या केवल विज्ञान कथा की आकृति का नाम नहीं है। यह उस आधुनिक धारणा पर प्रश्न है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेने वाला, अपने शरीर और परिवेश पर नियंत्रण रखने वाला केंद्र माना गया था। इस उदार मानवतावादी आदर्श में चेतना को प्रधानता मिलती है और शरीर अक्सर चेतना का वाहन भर बन जाता है। हिल्स बताती है कि यह आदर्श सभी मनुष्यों का समान अनुभव कभी नहीं था, क्योंकि वर्ग, लिंग, नस्ल और श्रम की असमानताओं ने बहुतों को ऐसी स्वायत्तता से दूर रखा। साइबरनेटिक्स ने जीव और मशीन दोनों को संचार, नियंत्रण और प्रतिपुष्टि वाली प्रणालियों के रूप में देखना शुरू किया। इससे मनुष्य और मशीन के बीच पुरानी कठोर सीमा कमजोर हुई। हिल्स इस बदलाव को ना तो सरल मुक्ति मानती है, ना पूरी तरह विनाश। उनका प्रश्न यह है कि जब निर्णय, स्मृति और संवेदना तकनीकी प्रणालियों के साथ वितरित होने लगे, तब जिम्मेदारी, एजेंसी और मानव मूल्य को कैसे समझा जाए। उनका उत्तर शरीर विहीन श्रेष्ठ चेतना नहीं, बल्कि संबंधों, निर्भरताओं और भौतिक स्थितियों को स्वीकार करने वाला एम्बॉडीड पोस्ट ह्यूमनिज्म है। दूसरा, सूचना का शरीर से अलग होना पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आलोचना है। पुस्तक की केंद्रीय कथा यह है कि 20वीं सदी में सूचना को धीरे धीरे उसके भौतिक वाहक से अलग, अमूर्त पैटर्न की तरह समझा जाने लगा। इस दृष्टि में संदेश कागज, विद्युत संकेत, जैविक संरचना या कंप्यूटर स्मृति जैसे अलग माध्यमों में बिना बदले स्थानांतरित हो सकता है। हिल्स इस विचार के उपयोगी तकनीकी पक्ष को नकारती नहीं है, लेकिन इसके दार्शनिक परिणामों पर जोर देती है। यदि सूचना को मूल और शरीर को बदल सकने वाला आवरण मान लिया जाए, तो मानव शरीर भी एक अस्थायी खोल जैसा प्रतीत होने लगता है। यहीं से चेतना को मशीन में स्थानांतरित करने जैसी कल्पनाएं आकर्षक बनती है। हिल्स दिखाती है कि हर सूचना प्रक्रिया को ऊर्जा, समय, संकेतों की गुणवत्ता, उपकरणों और व्याख्या की जरूरत होती है। माध्यम बदलने पर सूचना के अर्थ, पहुंच और प्रभाव भी बदल सकते हैं, इसलिए पैटर्न और उपस्थिति को अलग नहीं किया जा सकता। उनका एम्बॉडीड वर्चुअलिटी का विचार यही कहता है कि आभासी अनुभव भी वास्तविक देहों, इंद्रियों, तकनीकी अवसंरचना और सामाजिक परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। यह दृष्टि आज के डेटा प्लेटफॉर्म और AI विमर्श में भी उपयोगी है, क्योंकि वह पूछती है कि किसी कथित अमूर्त सूचना व्यवस्था का भौतिक खर्च और मानवीय असर किस पर पड़ता है। तीसरा, मेसी कॉन्फ्रेंसेस और साइबरनेटिक्स ने मनुष्य मशीन विभाजन को नई तरह से परिभाषित किया। हिल्स साइबरनेटिक्स के विकास को केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की सूची की तरह नहीं पढ़ती। वे दिखाती है कि युद्धोत्तर काल की मेसी कॉन्फ्रेंसेस में गणितज्ञों, इंजीनियरों, जीव विज्ञानियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने संचार, नियंत्रण और प्रतिपुष्टि के साझा शब्दों में जीवों तथा मशीनों को समझने का प्रयास किया। प्रथम साइबरनेटिक चरण में मुख्य प्रश्न था कि कोई प्रणाली अव्यवस्था और शोर के बीच अपना संगठन कैसे बनाए रखती है। प्रतिपुष्टि का विचार बताता है कि क्रिया के परिणाम फिर प्रणाली में लौटते हैं और आगे की क्रिया को बदलते हैं। इस मॉडल ने मानव व्यवहार को भी अलग थलग आत्मा की अभिव्यक्ति के बजाय पर्यावरण के साथ चल रहे संकेत विनिमय के रूप में देखने की संभावना दी। हिल्स इस परिवर्तन की बौद्धिक शक्ति और उसकी सीमाएं दोनों रेखांकित करती है। साझा भाषा ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद संभव किया, पर उसने कभी कभी देह, इतिहास और सत्ता के फर्कों को एक समान प्रणालीगत शब्दावली में ढक दिया। नॉर्बर्ट वीनर जैसे आरंभिक चिंतकों की मानवीय चिंताओं के बावजूद साइबरनेटिक अवधारणाओं ने स्वायत्त व्यक्ति की धारणा को अस्थिर किया। पुस्तक इसलिए तकनीकी शब्दों के पीछे छिपे सांस्कृतिक अनुमानों को खोलती है, विशेषकर यह अनुमान कि नियंत्रण और संचार का मॉडल हर प्रकार के जीवन को पर्याप्त रूप से समझा सकता है। चौथा, फ्लिकरिंग सिग्निफायर्स के माध्यम से हेल्स डिजिटल लेखन और अर्थ निर्माण का बदलाव समझाती है। हेल्स मुद्रित पाठ और डिजिटल पाठ के अंतर को केवल स्क्रीन बनाम कागज का अंतर नहीं मानती। मुद्रण में अक्षर अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए पाठ का भौतिक रूप पीछे हट जाता है और अर्थ को स्थिर मानना आसान हो जाता है। डिजिटल माध्यम में पाठ अंतर्निहित कोड, सॉफ्टवेयर, स्क्रीन इंटरफेस और उपयोगकर्ता की क्रिया के कई स्तरों से बनता है। हिल्स इस गतिशीलता को फ्लिकरिंग सिग्निफायर्स की संकल्पना से समझाती है। संकेत का रूप अलग अलग स्तरों पर बदलता रहता है, जैसे कोड से मशीन प्रक्रिया, फिर दृश्य चिन्ह और फिर पाठक की व्याख्या। इसका मतलब यह नहीं कि अर्थ असंभव हो जाता है, बल्कि अर्थ निर्माण में माध्यम की सक्रिय भूमिका अधिक स्पष्ट हो जाती है। पाठक केवल तैयार सामग्री ग्रहण नहीं करता, वह नेविगेशन, चयन और इंटरफेस के माध्यम से पाठ के अनुभव में भाग लेता है। हेल्स का साहित्यिक विश्लेषण इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वह डिजिटल तकनीक को बाहरी उपकरण ना मानकर पढ़ने, लिखने और विषय बनने की आदतों को बदलने वाली शक्ति मानता है। यह दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक साहित्य की संभावनाओं को भी पहचानती है, लेकिन तकनीकी नवीनता को स्वतः प्रगतिशील नहीं मानती। प्रश्न रहता है कि कौन सा माध्यम किस प्रकार की देह, ध्यान, पहुंच और व्याख्या को संभव या सीमित कर रहा है। अंत में साहित्यिक उदाहरण तकनीकी सिद्धांतों के सांस्कृतिक और नैतिक परिणामों की जांच करते हैं। हेल्स की पद्धति की विशेषता यह है कि वे साइबरनेटिक्स के वैज्ञानिक इतिहास को साहित्य से अलग नहीं करती। बर्नार्ड वुल्फ के लिम्बो और फिलिप के डिक के उपन्यासों जैसे उदाहरणों के माध्यम से वे देखती है कि नियंत्रण, कृत्रिमता, पहचान और वास्तविकता के प्रश्न लोकप्रिय कल्पना में कैसे रूप लेते हैं। साहित्य यहाँ वैज्ञानिक विचारों का सरल चित्रण नहीं है, वह उन तनावों को सामने लाता है जिन्हें औपचारिक सिद्धांत अक्सर दबा देता है, जैसे भय, इच्छा, भ्रम, हिंसा, असमान शक्ति और शरीर के प्रति असुविधा। कृत्रिम जीवन और आत्मसंगठन की चर्चाएं भी हेल्स को यह पूछने का अवसर देती है कि किसी प्रणाली को जीवित, स्वायत्त या बुद्धिमान कहने के मानदंड कौन तय करता है। वे विशेष रूप से सावधान करती है कि मानव को सूचना पैटर्न तक सीमित कर देना शरीर के श्रम और भौतिक भिन्नताओं का अवमूल्यन कर सकता है। नारीवादी आलोचना से संवाद करते हुए पुस्तक बताती है कि शरीर को त्यागने की भाषा तटस्थ नहीं होती। इस तरह साहित्यिक पाठ वैकल्पिक कल्पना शक्ति उपलब्ध कराते हैं। वे तकनीकी भविष्य को अनिवार्य नियति मानने के बजाय उसके नैतिक चुनावों को दिखाई देने योग्य बनाते हैं। यही कारण है कि पुस्तक तकनीक पर सामान्य टिप्पणी से आगे बढ़कर विज्ञान, संस्कृति और सत्ता के पारस्परिक निर्माण का अध्ययन बनती है। निष्कर्ष में, हाउ वी बिकेम पॉस्ट्यूमन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI, डिजिटल मीडिया, डेटा, वर्चुअलिटी और मानव पहचान पर चल रही बहसों की वैचारिक पृष्ठभूमि समझना चाहते हैं। यह तकनीकी मार्गदर्शिका नहीं है, इसलिए तुरंत लागू किए जा सकने वाले उपकरण या भविष्यवाणियां इसकी प्राथमिकता नहीं है। इसका लाभ अधिक गहरा है। यह पाठक को उन छिपी धारणाओं को पहचानना सिखाती है जिनके आधार पर हम सूचना, बुद्धिमत्ता, शरीर और स्वायत्तता की बात करते हैं। साहित्य और सांस्कृतिक सिद्धांत के विद्यार्थियों को इसमें डिजिटल पाठ और विज्ञान कथा के अध्ययन के मजबूत तरीके मिलेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी अध्ययन, दर्शन, मीडिया अध्ययन और नारीवादी सिद्धांत के पाठकों के लिए यह अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी भाषा और तर्क कई जगह घने तथा अकादमिक हैं, इसलिए धैर्यपूर्ण पठन अपेक्षित है। फिर भी इसकी विशिष्टता इसी व्यापकता में है। तकनीक पर अनेक पुस्तकें या तो नवाचार का उत्सव मनाती हैं या उसके खतरों की चेतावनी देती है। हेल्स दोनों सरलीकरणों से बचती हैं। वे साइबरनेटिक्स के इतिहास, सूचना की भौतिकता और साहित्यिक कल्पना को एक साथ रखकर दिखाती हैं कि पोस्ट ह्यूमन भविष्य कोई दूर की घटना नहीं, बल्कि हमारे सोचने के ढंग में पहले से घटित बदलाव है। उनका एम्बॉडीड वर्चुअलिटी का आग्रह आज भी निर्णायक प्रश्न उठाता है। जब डिजिटल प्रणालियां बढ़ रही है, तब किन शरीरों, श्रमों और परिस्थितियों को हम देख रहे हैं और किन्हें अदृश्य कर रहे हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एन कैथरीन हायल्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।